श्रीमद भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। बोर्ड पर श्लोक लिखा है स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 24। अनुवादन का अवसर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, मनुष्य को चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण सदाचार तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे। भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना समाधि में ध्यान करके करे और शरीर तथा मन से उत्पन्न दुखों का प्रतिकार हठ योग प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा करे। इसी प्रकार विशेष रूप से सत्वगुण का विकास करके खाने के मामले में निद्रा पर विजय पाई जा सकती है या विजय पाए। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसा भोजन करने का अभ्यास करे जिससे अन्य जीवों को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि किसी द्वारा चिकोटी काटे जाने पर या मारे जाने पर मुझे कष्ट होता है, इसलिए मुझे भी अन्य जीवों को चिकोटी काटने या उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोगों को यह पता नहीं रहता कि निर्दोष पशुओं का वध करने के कारण उन्हें भौतिक प्रकृति के कठोर कर्म फलों को भोगना पड़ेगा। जिस भी देश के लोग अनावश्यक पशु वध करते हैं उन्हें प्रकृति द्वारा लादे जाने वाले युद्ध का तथा महामारी के कष्टों को भोगना पड़ेगा। अतः अन्यों के कष्ट से अपने कष्टों की तुलना करके मनुष्य को सभी जीवों पर दयालु रहना चाहिए। कोई भाग्य द्वारा थोपे गए कष्टों से बच नहीं सकता, अतएव जब कष्ट आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में पुण्यतालीन हो जाए। मनुष्य हठ योग के अभ्यास से शरीर तथा मन के कष्टों से बच सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साकजातां सहगणरघुनाथान्वितं संसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि जी जो है युधिष्ठिर महाराज को कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं और अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए आदेश या उपदेश। तो इस विशेष श्लोक में बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे। तो मुख्यतः तीन प्रकार के कष्टों का इसमें चर्चा की गई है और एक सुसंस्कृत व्यक्ति को जब कष्ट आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि आती हैं, तो ऐसी अवस्था में उसे क्या करना चाहिए या वो क्या करते हैं, तो उसके विषय में बताया जा रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है इसमें कि हम लोग इस संसार में रहते हैं और वो सारे समस्याएं, दुख, तकलीफें हमें भी आती हैं। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं कि हमें भी बताइए, जो गृहस्थ में है या जो इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो उनके लिए क्या आदेश या उपदेश क्या है। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को एक माध्यम बनाकर हम लोगों के लिए कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, और ये शिक्षाएं इतनी जरूरी और इतनी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने इन शिक्षाओं को सुन लिया या इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति इस संसार में भी बहुत आसानी से जी सकता है बिना किसी समस्या के। और हम सब संसार में रहने वाले लोगों का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, अपने तन को, अपने मन को क्या रखना, सुखी रखना या आनंद में रहने का प्रयास करना। और इस प्रकार हम लोग अपने जितने भी कार्य करते हैं उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम सुखी रहें, अच्छे रहें। लेकिन हम देखते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहता है, दुख तकलीफें आती रहती हैं। मंदिरों में जाकर कभी मांगते नहीं कि हे भगवान आज ये हो जाए मेरे साथ, आज वो हो जाए, आज मैं जब बाहर निकलूं तो मेरी गाड़ी के टायर ना मिले या मेरी गाड़ी मिले ना टो करके कोई ले जाए, ऐसा कभी नहीं सोचते। लेकिन जब बाहर देखते के बारे तो देखते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है ना। और इस प्रकार की समस्याएं हम मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव है ना, घर के अंदर रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम, क्लोज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर जगह कोई ना कोई दुख तकलीफ आती रहती है। तो यहां पर आज विशेष करके तीन प्रकार के दुखों का भी चर्चा कर रहे हैं। वो तीन प्रकार के दुखों को एक एक शब्द में बोलते हैं, आत्मिक क्लेश या आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं, और आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफ इन तीनों में आ जाते हैं, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस समय में किस प्रकार के क्लेश से गुजर रहा हूं। क्योंकि कई बार जो दुख या तकलीफ आती है तो हमें दुख या तकलीफ दिखाई देती है, उसका रूट कॉज नहीं दिखाई देता, वो किस कारण से आई या उसको कौन सा दुख कहते हैं। शास्त्र उसको तीन चीजों में इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आत्मिक क्लेश, ये वो क्लेश होते हैं जो हमारे मन और हमारे शरीर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो पूरे संसार में कहीं ना कहीं लोग अपने शरीर की समस्याओं से परेशान है और अपने मन की समस्याओं से परेशान है कि नहीं, सभी लोग है कि नहीं। किसी का शरीर उसको दुख देता है, कष्ट का कारण बनता है, या फिर उसका मन, जब शरीर उसको दुख देता है, तकलीफ देती है, तो बीमारियों के रूप में उसको समस्या आती है। हमारे पास खाने की या और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो जो हमें सुख देते हो, लेकिन अगर इतने बड़े शरीर की छोटी सी उंगली के नाखून में भी समस्या हो जाए, तो पूरे शरीर का ध्यान कहां केंद्रित होता है, उस छोटी सी समस्या को दूर कर रहे। तो व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई समस्या ना, और कोई समस्या आ भी जाए तो उसे निजात पाने के लिए कहां कहां नहीं जाता। कई बार हम देखते हैं कई बच्चों को या बाहर के लोगों को ऐसी बीमारियां गुजरती हैं कि उस बीमारी का जो इलाज करने वाला डॉक्टर है, एमडी की है, अगर तो वो भी ठीक नहीं कर पाता। एक से एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वो भी उसका इलाज नहीं होता। फिर लोग पूछते हैं कि कहां होगा, फिर उन लोगों से पता करते हैं कि डॉक्टर से तो हाथ खड़े करते हैं कहां जाए, तो फिर वो कोई ना कोई टोना टाटका वाले या कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाले, ये बताने वाले, उनके पास वो जाते हैं, फिर उधर भी हार कर वापस आ जाते हैं। फिर मंदिर को भी चक्कर लगाते हैं कि कहां पर जाएं, किधर से काम पूरा होगा, कहां से मेरा दुख दूर होगा, तो उन जगह पर भी जाते हैं। और जहां पर हो जाए, मतलब जिस जगह पर जाकर हो जाए, तो उसका पूरा विश्वास, उसका पूरा फेथ कहां बन जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह बदल जाएगा। चाहे वो खुद भी डॉक्टर या साइंटिस्ट क्यों ना हो और किसी बीमारी से परेशान है और सारे डॉक्टर्स को उसने दिखा दिया है, सारे चिकित्सकबाजी उसने कर ली है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी जगह उसका ठीक हो जाए तो उसका फेथ वहां पर बन जाता है। कहते यार वास्तव में जगह होती तो ऐसे ही होता है इसको, क्योंकि उसको उस कष्ट से निकाल दिया गया। तो उन कष्टों को दूर करने के लिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए। और मानसिक कष्ट, ये भी हमें बड़े तंग करते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। मन से जो हम योजनाएं बनाते हैं या जो प्लानिंग्स करते हैं या जो फ्यूचर में हम लोगों को लगता है कि ये होने वाला है, ऐसा हो जाएगा और ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये होने वाला है, ख्याली तनाव जैसे बोलते हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे बोलते हैं, तो ऐसे सपने बनाकर भी हम लोग बहुत आनंद में रहते हैं। फैंटेसी, उस थॉट्स को कल्टीवेट कर करके आनंद का अनुभूति करते हैं। और कई बार यही मन हमें दूसरे ढंग से परेशान करता है, जब इनसिक्योरिटी होती है, जब कोई कंपटीशन होता है, जब कोई आपको कुछ शब्दों से आघात कर दे, तब उन विचारों को, उन शब्दों को बार बार चिंतन करके सोचकर हम दुखी और परेशान रहते हैं। अच्छे भले जीवन में बस एक चिंगारी लगा दो, मन में एक कष्ट ले आओ, मन के अंदर कोई एक विचार ले आइए और वो विचार आपका जीवन क्या कर देगा, पूरा उथल पुथल कर देगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तान तितिक्षेवा भारत, अर्जुन ये सब आएंगे, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। विधि उसी प्रकार है जिस प्रकार गर्मी और सर्दी होती है। आगम अपायनो अनित्यम तान प्रत्यक्षवा भारत, अर्जुन ये आएंगे, ये आएंगे और जाएंगे, समय के हिसाब से आएंगे और समय के हिसाब से चले जाएंगे। इनको क्या करो, सहन करो। और भक्त लोग ये जानते हैं कि कष्ट आएंगे, ये समस्याएं आती हैं, तो क्या करते हैं, वो इसका मार्ग ढूंढते हैं, इसका नाम जानते हैं पहले कि कौन से कलेश से मैं गुजर रहा हूं, कौन से कलेश है दोनों, आत्मिक कलेश। हाँ, शास्त्रों में लिखा है, एक बार सुना था, मंदिर गए थे तो आत्मिक कलेश कौन से होते हैं, तो उससे मैं बड़ा परेशान हूं आजकल। शरीर के कलेश सहन करने पड़ेंगे, मन के कलेश, ये तो विभुत दुख है, मन एव ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही एक ऐसा हमारा वो है, एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, ये बंधन का कारण बनता है और हमारी मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन जब ये इसी संसार में लगा रहता है और यही का चिंतन करता है भोगों का, तो फिर ये क्या करता है, बंधाए विषया संगो। अगर हम लोग इस संसार के भोगों का ही चिंतन कर रहे हैं तो इस संसार में बांधने वाला है, अर्थात फिर से आना पड़ेगा उन भोगों की पूर्ति करने के लिए। और अगर क्या किया, अपने को मुक्त कर लिया उन विचारों से, तो क्या होगा, यही हमारा मुक्ति का कारण बन जाएगा, विषयों से अगर दूर हो गए तो। इस प्रकार आदि जो ये आत्मिक कलेश हैं, ये है मन के द्वारा दिए जाने वाले और हमारे शरीर के द्वारा दिए जाने वाले। लेकिन जो भक्त लोग हैं उसका मतलब क्या है, पहले तो वो चिंतन करते हैं कि यार ये कौन से कलेश है, हमें क्यों आ रहे हैं। जब शरीर के कष्ट आते हैं और हम दुनिया भर के चक्कर लगाए, हमारे प्रयास से भी ठीक नहीं हो रहे, प्रयास करते रहने चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये समझ जाना चाहिए, श्री राधा राधे कर्म भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, ये समझ जाना चाहिए कि ये जरूर कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्म का कर्म है या उसका प्रारब्ध है, जो मुझे लगभग इतने पीरियड तक सहना है, इतने पीरियड तक इसका कष्ट मुझे लगा रहेगा। कई लोग कुंडलियां लेके जाते हैं ब्राह्मणों के पास, तो बताते हैं आपकी ये दशा चल रही है, आपकी वो दशा चल रही है, ये कष्ट आपको इतने साल तक रहेगा, तो कोई उपाय बताइए, तो उपाय भी बताए जाते हैं कई बार, और फिर भी कई बार नहीं होता है, फिर व्यक्ति की रोज चक्कर लगाता है, क्योंकि आज वो प्योरिटी नहीं है कि ब्राह्मण अगर उन उपायों को करे तो उस व्यक्ति को क्या करे, ठीक कर दे, उस तरह की प्योरिटी भी मेंटेन नहीं है। और इस प्रकार क्या होता है, वो कष्ट हमें परेशान करता रहता है। तो जो इस प्रकार का कष्ट है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बीमारी मुझे लगी है, ये मेरे पूर्व जन्म का क्या है, कर्म है, उसका प्रारब्ध है, जो मुझे सहना ही पड़ेगा। रूपा जी कह रहे प्रति क्या करना चाहिए, दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण से करें। इस तरह के जो दुख आते हैं जिसे आत्मिक कलेश बोलते हैं, इनका क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, अच्छे आचरण से इसका वो करना चाहिए प्रतिकार। दूसरे कलेश बताए आदि भौतिक कलेश, ये वो कलेश है जो हम लोगों को दूसरों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और हर व्यक्ति को कोई ना कोई व्यक्ति कलेश दे रहा है, मतलब आपके अलावा दूसरा, तो आपके अलावा दूसरा कौन कौन है, सारे, लेकिन मच्छर तक अलग है, वो भी कष्ट देता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जानते नहीं, वो कलेश देते हैं किसी न किसी लोक परलोक के कारण, और कुछ ऐसे कलेश हैं जो हमारे अपने देते हैं। अपने कैसे देते हैं? जिनको हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत करीबी हैं। दूसरों के कष्ट तो कहते हैं व्यक्ति फिर भी सह लेता है दूसरों को दिए हुए, लेकिन जब अपने वाला देता है ना, जो बहुत करीबी है, जिससे ये आशा नहीं रहती कि ये करेगा हमारे साथ कुछ ऐसा, तो उसका जो दर्द होता है वो बहुत ही गहन, बहुत ही खतरनाक होता है उसका दर्द। और कई बार तो जब अपना करीबी कुछ ऐसे शब्द बोल दे, तो क्या होता है? दिवाली में जैसे पटाखे बजते हैं, हृदय में ऐसे पटाखे बजते हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इन कष्टों से परेशान है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं खाली इसलिए क्योंकि उनके सास ने, जब वो बहू बनकर आई थी तब उनकी सास ने कुछ बोला था उनको, भीड़ में उनकी बेइज्जती कर दी थी, या बहू इसलिए परेशान है, वो डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि सास ने बोला था तो लेकर के आई है इसलिए परेशान, ऐसा क्यों बोल दी जबकि मैं तो इतना लाई। कुछ ना कुछ शब्द, पति कुछ बोल दे, पत्नी कुछ बोल दे, बच्चे कुछ बोल दे, बचपन से पाला हमने उनको, और आखिरी में बोलते हैं आपने हमारे लिए किए क्या है। तो माता पिता कहते कहां जाएं, कहां कूदे हम, कहां से छलांग मारे। तो दूसरों के द्वारा दिए जाने में कष्ट, चाहे वो हमें कुछ आनंद की अनुभूति भी करा रहे हैं, लेकिन ये आनंद कल को बहुत बड़े दुख में बदल जाएगा। भगवान ने तो साफ साफ बोला है कि यहां के सुख और यहां के दुख क्या करो, सहन करो। हम सुख में चले जाते हैं, झाड़ पर चढ़ जाते हैं, ऊंचे वाले कोर में चले जाते हैं, सुख है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा फील भी हो रहा है, और जब वहां से नीचे गिरते हैं तो आवाज भी तेज आती है, दर्द भी बहुत तेज होता है। इसलिए भगवान ने बोला सुख को भी सहन करना है। सुख में हम लोग ऐसे हो जाते हैं और इस प्रकार के जो गीत भी गुनगुनाएंगे, मूवीज भी देखेंगे, और जाकर ना खाएंगे, है ना, आसमान में उड़ने की आशा और पता नहीं क्या क्या, आज मैं ऊपर, इस प्रकार के गाने भी लोग गाते हैं, और ये सुख उसको कुछ समय के बाद दुख में बदलता नजर आता है, कुछ ही समय के बाद, क्योंकि भौतिक जगत है। तो ये है आदि भौतिक कलेश जो दूसरों के द्वारा हमें दिए जाते हैं। इस संसार में अगर किसी से प्रेम भी कर लिया, किसी की सेवा भी कर ली, तो भी नुकसान। एक बार एक राजा था, वो इतना खतरनाक था कि उसने अपने पास 10 खतरनाक कुत्ते पाले थे, बड़े बड़े दांत वाले। तो जो भी राज्य में कोई परेशान करता था, दुखी करता था, एक दूसरे को परेशान करता था, उसको परेशान करता था, वो क्या करता था, उसको उन कुत्तों के बाड़े में डाल देता था, और वो कुत्ते क्या करते थे, उसको काट काट के खत्म कर देते थे। एक बार उसके अपने लिए करीबी से उसको कोई समस्या हुई, खास मंत्री जिसने जीवन भर दलित लोगों की सेवा करी, एक डिसीजन उसने ऐसा ले लिया जिसकी वजह से राजा को नुकसान हो गया। राजा ने कहा इसको क्या करो, इधर भैया बता तू भी वहां जा। कहते सर मुझे 10 दिन के तो मैं मोहल्लत दे दू, इतना समय काम था। कहता ठीक है, 10 दिन बाद इसको इस बाड़े में, कुत्तों के बाड़े में डाल दे। कहते ठीक है। तो 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 10 दिन के बाद उस मंत्री को बुलाएगा, कहते सर आज हमारे सामने कहते डालो उसको, उसको उन कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाता है, और कुत्ते को छोड़ा जाता है, कुत्ते भागते हैं उसकी तरफ, और जैसे भागते हैं और जैसे करीब आते हैं वो अचानक जंप लगाने लगते हैं उसके ऊपर और पूंछ हिलाने लगते हैं करके ऐसे करके। राजा हैरान परेशान, सब आश्चर्यचकित, सब देख रहे थे कि आज से मंत्री गया, लेकिन कुत्ते क्या कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। राजा बहुत परेशान, उसको लग क्या हो गया आज, ये कुत्ते को क्या हो गया, ये कहीं इस कौन में जाकर प्रसाद तो नहीं खाया है। तो क्या हुआ, राजा ने मंत्री को बुलाया, कहते इधर लाओ इसको। कहते भाई मेरे को पहले तो ये समझाओ, ये आज तक का रिकॉर्ड है इनका, ये तो छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं आदमी को, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, किसने तुम्हें नहीं कुछ कहा इन कुत्तों ने। तो कहते सर आपसे जो मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी ना, मैं उस दिन 10 दिन से क्या करा, मैं इन कुत्तों के बीच में रहा, रोज इनको खाने को कुछ देता था, इनको प्यार करता था, इनको नहलाता था, इनको धुलाता था, इनकी बहुत मैंने केयर करी 10 दिन तक, तो इनकी मेरे से बहुत अच्छी मित्रता हो गई। और इसलिए आपने जब मुझे इनको इनके बाड़े में डाला खाने के लिए, तो इन्होंने मुझे खाया नहीं बल्कि प्यार किया। मैंने 10 दिन तक इनकी सेवा करी तो इन्होंने मेरी जान की रक्षा करी। कहते महाराज अगर एक आप हैं आपकी मैं कब से सेवा करना था, एक ही तो गलती हुई थी और आपने जो है कुत्तों के बीच में मुझे डाल दिया। तो राजा को बड़ा फील हुआ कहता भाई भाई कुत्ते तो मेरे ज्यादा अच्छे हैं। तो इस संसार में अगर कोई सुख भी दे रहा है ये किसी का सेवा भी कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा खुद का दुश्मन बन सकता है। और ये दुख क्यों आते हैं, कई बार हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ मतलब अच्छे लोगों के साथ लोग बुरा क्यों करते हैं। हरे के हरे का प्रश्न होता है ना, ये हमारा पूरा सेमिनार है 2-3 घंटे का, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हर व्यक्ति अपने को अच्छा मानता है, अपने को डिग्री से खुद दे रखी है अच्छा आदमी। और शास्त्रों के हिसाब से देखें तो अच्छा बहुत मुश्किल से मिलता है ढूंढने को, फिर भी चलो उसको लगता है कि मैं अच्छा हूं ठीक है। लेकिन ये जो बुरे कर्म हमारे साथ होते हैं, लोग हमारे साथ जो बुरा करते हैं, हमारे शरीर में जो खतरनाक बीमारियां कुछ कष्ट आते हैं, यह सुख हमसे दूर भागता रहता है, ये धन कमाना चाहते हैं, पैसा लगाते जाते हैं, आता नहीं है, क्या कर रहे हैं इनका। इसका कारण है कि हमारी जो मूवी है ना, हमारी लाइफ की मूवी टू बी कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू चल रही है। ये पूर्व जन्म के कर्म, इच्छाएं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमने कर डाली चीजें, केवल शरीर को दाह संस्कार किया गया था, मन बुद्धि अहंकार जिसमें सारी चीजें स्टोर थी ये खत्म नहीं हुआ था। फोन खराब हुआ है, मोबाइल की चिप खराब नहीं हुई थी। इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ ये आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, फिर नया रोशनी, नया जीवन, नया परिवार, नया सेट ऑफ परिवार है, और फिर वहां से सब कुछ शुरू होता है। तो पूर्व जन्म जो हम कर आए हैं, भगवान के नियम इतने स्ट्रांग हैं, प्रकृति के नियम इतने स्ट्रांग हैं कि हम जो जो कर आए थे, जिस जिसको उद्वेग दिया था, जिस जिसको परेशान किया था, जिस जिसको गालियां दी थी, जिस जिसको थप्पड़ मारा था, जिस जिसका पैसा छीना था, जिस जिसके साथ उल्टा व्यवहार किया था, जिस जिसको यातनाएं दी थी, वो सब लोग हमें दूसरे रूप में आकर उन कष्टों का हमें क्या देंगे, फल प्रदान करेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में, चाहे आप उस समय सही हो, लेकिन पूर्व जन्म में करके आए जो, चाहे वो आपके पति के रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो, चाहे आपके बच्चों के रूप में हो, चाहे आपके रिलेटिव के रूप में हो, चाहे गवर्नमेंट के रूप में हो, चाहे पुलिस वाले के रूप में हो, चाहे कोर्ट के रूप में हो, मच्छरों के रूप में हो, सांप के रूप में हो, कुत्ते के रूप में, किसी न किसी रूप में वो बदले पूरे किए जाएंगे। खबरदार ये नहीं बोलना कि हम तो अच्छा कर रहे थे फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। भगवान के नियम, इस प्रकृति के नियम ऐसे नहीं कि किसी के साथ गलती से कुछ गलत काम हो जाए, और अगर गलत हो जाता है ना, मान लीजिए, तो उसको तुरंत रेक्टिफाई कर दिया जाता है। जैसे अजामिल को आखिरी में जब लेने आए तो गलती हुई, यमदूत तो लेने आ गए, उनको डिस्टर्ब किया, लेकिन नहीं ले जाने दिया विष्णु दूतों ने। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी दादी मर गई थी, 1-2 घंटे बाद फिर जिंदा होकर बैठ गई, फिर 2-3 दिन बाद मरी, वो कहती है कुछ देख लिया था उन्होंने, तो लेने आए थे, फिर लगाया, गलत ले आए, फिर आपने छोड़ दिया कि अभी टाइम नहीं हुआ इनका। कितने लोगों ने दर्शन किया ऐसे लोगों का, आप लोगों ने नहीं किया होगा, मतलब अंतिम समय में करते हैं लोग दर्शन। तो बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है, मार रहा है, या इसने मुझे गाली क्यों दी, या इसने थप्पड़ क्यों मार दिया, मैं तो कोई गलती भी नहीं थी। ये केवल और केवल बलदेव विद्याभूषण जी अपने गीता भूषण की टिप्पणी में बताते हैं कि हमारे साथ सारी परिस्थितियां केवल और केवल हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारे सामने सिचुएशन आती हैं कि कोई आपको दुख दे, परेशान करे, तो किसकी गलती है इसमें। हम दोष किसको देते हैं, तो जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो फिर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं
दूसरे का प्रतिकार करते हैं, उसने एक मारा, दो मारा, दो सैनिक, तीसरा हमने भी मार दिया, तो ये जो प्रतिकार कर दिया या इस तरह की चीजें करते हैं, ये फिर हम एक कर्म को और जनरेट करते हैं। समझे नहीं समझे? तो हम और कर्म जनरेट कर देते हैं और उन जनरेशन न्यू जो कर्म जनरेट होते हैं वो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। किसी को उद्वेग दिया, परेशान किया, डराया, धमकाया, धक्का दिया, पैसा छीना, कुछ भी करा, खबरदार अभी तो वो आपको सुख दे देगा, अभी तो पैसा छीन गया, पैसा आ गया, सुख है कि नहीं? थोड़ा सा झूठ बोला, टैक्स बचा लिया, सुख है कि नहीं? किसी ने देखा नहीं, चोरी कर ली, सुख है कि नहीं? किसी को एक जोर से मारा, पूरी कॉलोनी में वाह वाह हो रही है, सुख है कि नहीं? हाँ, ये सुख है, थोड़ा अच्छा लगता है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, अब तैयार रहिए। किस लिए? उसी जन्म में या कुछ अगले जन्म में आपको सूद समेत वापस मिलेगा। प्राचीन भले आता है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में, वो भी बड़े कर्म कांड कर रहे थे, बलियां दे रहे थे पशुओं की। नारद जी पहुंचे, कहते तुम्हारे बेटे भक्ति कर रहे हो, तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तुम्हारे बेटे लोग जो है फुल टाइम हो रखे और तुम अभी मानसार कर रहे, अर्थात काट रहे और उल्टे सीधे कर रहे। कहते ये देखो आकाश में देखो, जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है वो देखो कैसे दांत निकाले तुम्हारी तरफ घूर रही, कब आएगा ये, इसका कब टाइम आएगा, फिर हम इसको नोच के खाएंगे इसको। प्रभुपाद जी कह रहे जहां वहां जिस जिस देश में इस प्रकार हत्याएं होती हैं पशुओं की, अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए लोग पशुओं के बलि दे रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उस देश में महामारी और आतंक बचा ही रहेगा। अब देखिए इस संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कैसे ठीक रहना है? हमने परमाणु बम बना लिया, इससे क्या होता है? क्या होता है? आप एक समय में लाखों लोग को मार सकते हो, तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? भी लोग मरेंगे, आदमी मर रहे हैं ना, तो ये हमने अपनी मृत्यु का सामान खुद इकट्ठा कर लिया। दो देश के लीडर अनक्वालिफाइड, किन्होंने चुना उनको? अज्ञानता में पशुवत जीवन के जीने वाले लोग, मांसाहारी, कबाबी, इस तरह के लोगों ने चुना उनको। दो लोग, दोनों की ईगो प्रॉब्लम चल रही है, तू अपनी जगह से हटा इसको, ये मेरी लाइन है, ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरी पॉलिसी है, तुम्हारी ये पॉलिसी है, ये सब बात कर रहे हैं, और दोनों की ईगो की प्रॉब्लम में झगड़ा हो गया। अभी ना वो झुकता है ना वो झुकता है। कहते हैं संबंध कैसे बनेंगे? एक मैसेज पढ़ा कि किसी का बहुत मोटा पेट हो और किसी का बहुत बड़ा अहंकार हो, ये दोनों गले लगने की उसमें बाधा है। ये गले नहीं लगने देता, मित्रता तो कैसे होगी? अहंकार वाला कोई मित्र कर सकता है? तो इस प्रकार दोनों का अहंकार क्या है? ऊंचा है। अब इन दोनों मूर्खों के चक्कर में जो बेचारी जनता है अपने काम धंधे कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है सारे, उसने कहा ठीक है तुम नहीं मानोगे तो मैं परमाणु बम छोड़ देता हूं, लाख, डेढ़ लाख, दो लाख लोग खत्म। अगर तूने छोड़ा है, मेरे पास भी है, इधर के लोग खत्म। तो अपनी मृत्यु का सामान बना रहे हैं, मैंने जो बनाया है वो मेरे देश के लोग उससे नहीं मरेंगे, दूसरे देश के लोग मारूंगा उससे, उन बेचारों की क्या जरूरत है? तो उसकी ही होगी। तो इस प्रकार अपनी मृत्यु का सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपनी अहंकार के कारण। तो इस प्रकार ये जो आदि भौतिक कलेश हैं, दूसरे लोग जो हमें कष्ट देते हैं, इनके पीछे रीजन केवल ये है कि हम लोग कुछ गलत कर आए हैं। जन्म तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी का हो रहा है, फिर क्यों कुछ लोगों का इराक में, ईरान में हो रहा है, कुछ लोगों को सीरिया में हो रहा है, कुछ लोगों को साउथ अफ्रीका में हो रहा है, कुछ लोगों को अमेरिका में हो रहा है, किसी का भारत भूमि में वृंदावन में हो रहा है। ऐसा क्या किया है? एक है टॉप मोस्ट पीसफुल एरिया, आराम से लोग भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई बम नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई आतंक नहीं, कुछ नहीं। एक कहां हुआ? अमेरिका जैसे देश में परेशान दुखी हॉर्न बज रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गई हैं, परेशान है, वहां पर भी आतंक फैला पड़ा है, इसकी अपने को बचाने की सुरक्षा के लिए परेशानियां है ना, रजो को इतना है कि खाओ पियो ऐश करो का चल रहा है, भूला हुआ अपने जीवन के लक्ष्य को। तो एक वहां पैदा हुआ, और कुछ लोग पैदा हुए हैं ऐसी जगह पर जहां पर गर्दन काटी जा रही है, टांग देते हैं ऐसे करके काट काट के। ये लोग इन्होंने पहले गाय की काटी थी, अब वो मनुष्य शायद गाय बनकर उसकी काट रहा है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो जहां जहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार लोगों को दुख या कष्ट दिया जाता है दूसरे जीवों को, अपने को मारकर देखो ना चकोटी काटकर, लगता है दर्द होता है तो दूसरे को नहीं होता क्या? क्रिश्चियनिटी में बोलते नहीं नहीं नहीं, इन पशुओं में क्योंकि आत्मा नहीं होती इसलिए इनको खा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे भाई आत्मा नहीं चल क्या शरीर, तो कहते उनके अंदर भी जीवन है तुम्हारे अंदर भी जीवन है, तो आप उनका वध नहीं करोगे। तुम्हारे को कमा एक शिक्षा ये दी क्राइस्ट ने कि आप इसका किसी का भी वध नहीं करोगे। तो किसी का भी वध में फिर कोई भी आ गया, बट आपने क्या किया इंटरप्रिटेट करके उसको केल शब्द कर दिया जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए है कि मनुष्य को मत मारो, मनुष्य का वध ना करो। तो इस प्रकार अपनी इंद्रिय स्थिति के लिए हम लोग गलत गलत कामों में लगते हैं और उन गलत कामों का फिर रिएक्शन हमें लगता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर तीन विधि बताई है प्रपट में और उसमें अनुवाद में कि जो आदि देवी कलेश ये वो है कलेश जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई दूसरा तंग भी नहीं कर रहा, परेशान भी नहीं कर रहा, अपना शरीर भी ठीक चल रहा है, मैं योगा करता हूं, मैं ये करता हूं, सब ठीक चल रहा है ना, या पूल करके कर्म ऐसे थे कि कुछ नहीं मिल रहा है कोई कष्ट इस प्रकार का, लेकिन आदि देवी कलेश में जो प्रकृति के द्वारा देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और कैसे प्राप्त होते हैं? कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है ना, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। अभी देखा ना हम लोग पूरे देश में ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? जिस भारत जैसे देश में जहां धर्म का पालन करना बड़ी सुगमता से हो सकता है, वहां पर भी लोग उन्हीं पशुओं की भांति जी रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं जिस प्रकार दूसरे देशों में होता। तो भारत को भी नहीं छोड़ेंगे नियम, और यहां पर तो छोटे पाप के ज्यादा फल मिलेंगे, है कि नहीं? भाई एक अज्ञानी व्यक्ति कर रहा है तो उसको ठीक है सजा दे दी, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको सारे नियम मालूम है सब कुछ है तो भी पनिशमेंट ज्यादा है उसकी। तो इस संसार में इस देश में खासकर जब कुछ भी होता है यहां के लोग इसलिए कष्ट जाएगा, कई बार लोग बोलते हैं जो भारत में धर्म है भक्ति करते हैं लोग फिर इतने कष्ट में क्यों है? इसलिए कष्ट में है क्योंकि ये धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, ये कृष्ण कथा नहीं सुन रहे। इनका लक्ष्य, इनका जीवन का लक्ष्य यह था भारत भूमि में थे, हैले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करे कर परोपकार। केवल दो मुख्य कर्म बताए गए भारत भूमि में जन्म लेने वालों के, एक तो अपने जन्म को सार्थक करे। अपने जन्म को सार्थक करने का मतलब यह जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और भगवान से मेरा क्या संबंध है। अध्ययन शास्त्र का करते हुए अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास है। दूसरा, अगर आप तुम समझ गए हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो यह लक्ष्य है दूसरे देशों के लोगों को बताओ जिनको नहीं समझ है, जो पशुवत जी रहे हैं। तो ये दो काम, क्या जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो अभी तो अपने को छोड़ के दूसरे को प्रचार भी करना चाहिए साथ में ना, इतनी दूर तो कहां जाएंगे वहां तो दूसरे लोग जा रहे हैं। अभी तो पाश्चात्य देश बोलते थे, अभी पाश्चात्य देश ये भी हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग इसलिए पाश्चात्य देशों में जहां आधुनिकता भोग विलासिता ज्यादा है, अभी वही चीज इधर भी हो गई है ना। तो अब जो ओल्ड ईस्ट में है लोग वो भारत को भी वेस्ट बोलेंगे, जो ईस्ट कंट्रीज हैं थोड़ी सी वो बोलेंगे ये भी वेस्ट कंट्री है, वहां से भी लोग आएंगे यहां प्रचार करेंगे। अब चाइनीज आ रहे हैं वहां पर प्रचार करने के लिए, सब प्रचार कर रहे हैं हरे कृष्णा, उनको देख कर लोग प्रचारित हो गए, तो हम उनके लिए वेस्टर्नर्स हैं। तो बता रहे हैं क्या करना चाहिए इन तीनों प्रकार के कलेशों को ठीक करने के लिए, तीन रास्ते बताए हैं इसमें। क्या जो दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाता कष्ट आदि भौतिक कलेश, उसे कैसे करें, अच्छे सद आचरण के द्वारा उसका प्रतिकार करें। दूसरे लोग हमें कष्ट दे रहे हैं तो अपना आचरण बिल्कुल सही रखें, कोई गलत बोल रहे हैं तो भी सही रखें, और उनसे ईर्ष्या ना करें। अगर कोई गलत बोल रहा है या कुछ कर रहा है, हम लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर एक नया कर्म जनरेट करते हैं। उनको माफ करें, उनको दया करें, उनके ऊपर कि ठीक है ये जो हो सकते हैं मेरे पूर्वजन्म के कर्म है, और अगर नहीं भी है मान लीजिए तो भी क्षमा कर दें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति तमोगुण रजोगुण के वेग के कारण कुछ ऐसा अपना कर्म जनरेट कर रहा है, तो माफ करें। माफ करने पर आपको ज्यादा फल है, आपको ज्यादा उसका बेनिफिट आपको है। लेकिन अगर हम कुछ नया जनरेट करेंगे तो उसका लक्षण उसका हमको भी सहना पड़ेगा। भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना समाधि में ध्यान करके करें। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो भाग्य के द्वारा प्राप्त या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उसको कैसे करें, उसका प्रतिकार कैसे करें, समाधि में रहकर। समाधि बोले तो एक समाधि की सोना, मतलब ऐसी क्रिया। समाधि का मतलब अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को एंगेज करने पूरी तरह, किसमें, भगवान की सेवा में। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है मन वाणी कर्म से, तो जब चित्त भी उसका यहां लगा है, वाणी भी उसकी यहीं पर है, हरिनाम ले रहा है, और क्या कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, शरीर को भी लगाया, तो जो बाहर के कलेश है ना, जो उसको उद्वेग देने वाले, तो वो शांत हो जाएंगे। तीसरा बता रहे हैं, हठ योग के प्रयाण के द्वारा मन तथा शरीर के कष्टों का निवारण करें। तो आठ प्रकार के अंग बताते हैं योगाभ्यास में, जिसमें बताते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, उनका पालन करें शास्त्रों के हिसाब से, विधिवत रूप से। और शरीर का आसन इत्यादि के द्वारा हम लोग शरीर भी ठीक रख सकते हैं, ताकि कष्ट जो आलसी रहकर आते हैं वो तो ना है कि सफाई नहीं करोगे तो कष्ट बीमारी को गंदगी बढ़ती है, उसी तरह इन सब का उपयोग कर हम लोग शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन स्वस्थ शरीर से करना क्या है, समाधि अर्थात फिर से कृष्ण भावना में कर्म करने, ताकि हमारे जो कर्म हो, जो क्रियाएं हो, जो क्योंकि मन से, वाणी से और कर्म से हमारे जो कर्म होते हैं, इसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जब ये पूरी तरह से भगवान में नियोजित रहेगी तो नए कर्म डेवलप नहीं होंगे, और जब नए कर्म नहीं इस प्रकार के होंगे जिसका फल मिलता है, तो बताते हैं जिसे कर्म खत्म, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म की वजह से हमें शरीर मिलता है, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना वाले कर्म कर रहे हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसका बुरा या अच्छा फल नहीं, उसका रिवार्ड क्या है कि जो रिपीटेड बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ है, हम लोग इससे सदा से लिए ऊपर हो जाएंगे, अर्थात भगवत धाम तक जाया जा सकता है केवल क्या करने से, कृष्ण भावना में कर्म करने से। और बता रहे हैं क्या करें, इसी प्रकार विशेष रूप से सत्वगुण का विकास करके खाने के मामले में निद्रा पर विजय पाई जा सकती है। तमोगुण में भोजन करना, बासी, मांस इत्यादि, ये हमारे में तमोगुण की वृद्धि करता है, भगवत गीता में लिखा है। रजोगुण की वृद्धि कैसे होती है, जो राजसिक भोजन करते हैं, लेकिन अगर सात्विक भोजन करते हैं, फलाहार या जिसमें अधिक वो नहीं है क्या, मिर्च या गरम या बहुत नमकीन, इस तरह के नहीं है भोजन जो, और भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, तो वो हमारे में सत्वगुण की वृद्धि करता है। तो निद्रा पर भी इससे क्या सकते हैं, विजय पा सकते हैं। वैसे तो कोई बोल सकता है नहीं, मैं तो ऑलरेडी बड़ा कम सोता हूं, है ना, और कई लोग हो सकता है बहुत ज्यादा सोते हैं, तो ये तमोगुण का लक्षण है। चाहे कोई कम सोए, कोई ज्यादा सोए, वास्तव में सभी लोग निद्रा में, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं। भक्तिवीर ठाकुर जी कहते हैं
जीव जागो गोर चांद्र बोले, कथो निद्रा जायो माया पिशा चीर कोले। कि उठिए, सभी जीवों को बोल रहे प्लीज उठिए उठिए, कब तक इस माया रूप पिशाची की गोद में लेटे रहोगे। तो एक उधर जागृत अवस्था में सोना और एक उधर सोए अवस्था में सोना। जो वैसा सोते हैं वो सोए हैं, उस समय कुछ नहीं कर सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। और कुछ लोग जागे हुए हैं लेकिन फिर भी सो रहे हैं। किस तरह सो रहे हैं ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इतने संसार में दुखी क्यों हूं, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो जो इन सब चीजों को नहीं कर रहा तो वो आंखें खोलकर भी सोया हुआ है। तो संसार में आंखें खोलकर लोग सोए हुए, अगर वो कृष्ण भावना भवित नहीं है, अगर वो भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगे हुए, तो कितनी अजीब बात है। अगर कोई हम लोग ऐसा व्यक्ति देख लें जो सो रहा है, उसने आंखें खोली हुई है, कितने हंसते हैं लोग, अरे आंखें खोल तो सोता है। और संसार में तो सारे लोग सो तो रहे हो, सारे लोग चल रहे हैं, फिर रहे, खा रहे पी रहे, लेकिन आंखें खोलकर जो दूसरी तरह की सुख अवस्था है, ये बड़ी डेंजरस है। तो इसे क्या करना है, हमको जागना है। और जागृत अवस्था का मतलब ही है सत्वगुण, अर्थात जब व्यक्ति इन आध्यात्मिक ग्रंथों का अनुशीलन करने लगता है। आगे इस श्लोक में बताएंगे कि ये सारी चीजें कैसे की जाती है, कि किस प्रकार गुरु के ऊपर में जो है पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो आगे के श्लोकों में वो भी बताएंगे, इसमें संस्कृत लोगों के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग कृष्ण भावना मन कर्मों में अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने कर्मों को लगा दें, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा विशुद्ध सत्व में रहेंगे, असत्व में रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोग राजसिक और तामसिक ना रहकर, क्योंकि कर्म जो है या बुरे या अच्छे तभी ज्यादा होते हैं जब लोग राजसिक या सात्विक या तामसिक रहते हैं, और वही कर्म हम लोगों को उद्रेजित करते हैं कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा कर्म करने के लिए। तो जितना जल्दी हम रजोगुण और तमोगुण से उठकर सत्वगुण में रहेंगे, सुबह जल्दी उठना, ठीक है ना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, आकर भगवान के नामों का जप करना, भक्तों का संग करना, ये सात्विक वृत्ति के लोगों का काम है। भोजन ऐसा करना जो अधिक तीखे और मिर्च वाले या गर्म नहीं, इस प्रकार के भोजन का नहीं करना, सात्विक भोजन। और क्या कहते हैं, वस्त्र भी इस प्रकार के पहनना जो सात्विक हो, वैष्णव वेशभूषा हो, है ना, पूरी तरह से सात्विक वृत्ति के वस्त्र ढके हुए। और कलर जो उनका बताते हैं सात्विक, जैसे पीला कलर है, सफेद कलर है, सैफरन कलर है, हल्के कलर है ना, और भी कलर उसके, लेकिन लाइट हो, तो ये सात्विक कलर है। और संग ऐसे लोगों का करें, ऐसे लोगों का जिनकी वृत्ति अच्छी है, जो गलत कामों में नहीं रहते, जो लोगों का उठना बैठना सब टाइम से है, है ना, ऐसे वृत्ति का, जो साधु वृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना। किस स्थान में रहें, ऐसे स्थान पर जो शुद्ध स्थान है, जहां पर सात्विक वृत्ति के लोग ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार इन लोगों के बीच में रहने से, इन लोगों की तरह क्रियाएं करने से अपने सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी और हम लोग इन सब शास्त्रों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, बताए गौर परमानंद।